बस मेरा है।
ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है,
बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है।
ओम शांति। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय शिलू दीदी जी उपस्थित हैं, हम उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आदरणीय शिलू दीदी जी त्यागी तपस्वी भगवान ने जिन्हें सरस्वती का वरदान दिया है, ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में आज पधारी है। चलन और चेहरे से ही सत्यता की सभ्यता का अनुभव हम सभी आत्माओं को हमेशा दीदी कराती रहती है। अपने निर्मल और तेजस्वी वाणी के माध्यम से विश्व के कोने कोने में बाबा का संदेश पहुंचाने के निमित्त शिलू दीदी जी बने हैं। राजयोग शिविर और टीवी पर कार्यक्रम और पीस ऑफ माइंड चैनल पर दीदी जी को हम रोज ही सुनते हैं और देखते रहते हैं। आपने अलौकिक और लौकिक पढ़ाई बंबई में की, बंबई यूनिवर्सिटी से की। लौकिक पढ़ाई पढ़ते आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और ईश्वरीय ज्ञानमय जीवन अपनाते हुए 42 वर्ष हुए। आपने साकार बाबा की विशेष पालना ली है। आप 5 खंडों में 60 देशों में सफर किया है। आप टीवी जी चैनल, जी टीवी, सोनी टीवी और सभी जगह पर लेक्चर आपने ही पहले शुरुआत में किए हैं। अव्यक्त बाप दादा ने आपको वरदान दिया कि आपकी जिभा पर सरस्वती विराजमान है। ऐसी महान त्यागी तपस्वी शिलू दीदी जी का हम सभी लाभ उठाएंगे। आज दीदी जी के लिए कहूंगी कि दीदी आपका जीवन है निर्मल, दीदी आपका जीवन है निर्मल, आपके वाणी में है माधुर्य सरल, आपके वाणी में है माधुर्य सरल, आपका ईश्वरीय जीवन है दिव्य गुणों से तरल, आपका ईश्वरीय जीवन है दिव्य गुणों से तरल, आप हो ज्ञान विना वादिनी धवल धवल, आप हो ज्ञान वादिनी धवल धवल। ऐसे हमारे प्यारे शिलू दीदी जी आज हमें ब्रह्मा बाबा की विशेषता और बेफिक्र जीवन इस पर हमें प्रकाश डालेंगे। शिलू दीदी जी,
ओम शांति। मधुबन में आकर कैसे लग रहा है? मुंबई की भागा दौड़ी वाली जीवन से दूर बेहद में बाबा की गोद में पहाड़ों के बीच ठंडी ठंडी हवाएं खाते हुए रिमझिम थोड़ी थोड़ी बारिश अनुभव करते हुए ये 3-4 दिन आपके कैसे बीत गए? बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो। वैसे तो मुंबई में तो कितने भाई बहने हैं, पर उनमें से केवल आप ही गिने चुने आ सके तो कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो बहुत सुंदर विषयों पर आपके अलग अलग अनुभवी भाई बहनों द्वारा, वरिष्ठ भाई बहनों द्वारा क्लासेस तो आपको मिल ही रहे हैं। तो मैंने पूछा मुझे कौन सा टॉपिक लेना है, तो कहा आप जो चाहो। मैंने कहा अच्छी बात है, मेरे लिए तो मेरी चॉइस। तो ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, बाप समान बेफिक्र बादशाह स्थिति कैसे हो। वैसे तो ब्रह्मा बाबा के कई कदम बताते हैं, लेकिन उनमें से एक कदम है ब्रह्मा बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह थे। आज के ही मुरली में पॉइंट थी कि ब्रह्मा बाबा नष्टो मोहा कैसे बने। कितनी देर लगी बाबा को नष्टो मोहा बनने में, बस साक्षात्कार हुआ और बन गई नष्टो मोहा। गीता पढ़ते हैं तो अर्जुन को तो कितना समय लगा नष्टो मोहा बनने में, कितने उनके मन में प्रश्न बताते हैं कि ये प्रश्न कैसे करूं कैसे करूं, कैसे कैसे ही प्रश्न थे। पर ब्रह्मा बाबा ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा कैसे या क्यों या कब कहां, ये कह की भाषा बोली नहीं। पर शिव बाबा ने कहा और धक से स्वाहा हो गए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बाबा को जो साक्षात्कार हुए उन साक्षात्कारों के आधार से उनको त्याग करना बड़ा सहज हो गया। अर्जुन का तो दिखाते हैं कि उनको पहले ज्ञान दिया तब बड़े प्रश्न उठे, और साक्षात्कार तो उसको अंत में हुए, वो अंत में दिखाते इसीलिए प्रश्न उठे। अगर पहले से ही साक्षात्कार हुआ होता तो प्रश्न नहीं उठते। लेकिन फिर ज्ञान कैसे मिलता, इसीलिए पहले ज्ञान दे दिया नष्ट मोहा बनने का ज्ञान, पर फिर भी समझ में नहीं आया तब उनको की आंखें खोली, ये तुमको कौन बता रहा है, स्वयं भगवान बता रहा है। तो ब्रह्मा बाबा को तो सबसे पहले विष्णु का साक्षात्कार जो हुआ उससे ही बाबा ने सोचा कि अरे ये तो गधा ही है, हमको तो राजाई मिल रही है। ये राजाई जो स्वर्ग की राजाई की भेंट में, ये गधाई क्या है, कुछ नहीं है। बाबा को हीरे तो पत्थर दिखाई देने लगे, इतना सहज उनको वैराग्य आ गया और हद से बेहद में आ गए, बेफिक्र बादशाह बन गए, तन मन धन से समर्पित हो गए और ये यज्ञ स्थापित हुआ। एक ने अपना बीज डाला और उस एक के बीज के बलबूते पर हम कहेंगे कि आज यह वट वृक्ष के समान यह बाबा का यज्ञ सारे विश्व में फैला हुआ है। लेकिन हिम्मत का एक बीज ब्रह्मा बाबा ने डाला, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। उनका भी बड़ा परिवार था, पांच बच्चे थे और बड़ा सुखी परिवार था, पोते दोते भी थे, कितना फ्लरिशिंग, कितना अच्छा उनका व्यापार चल रहा था, राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना था, अंग्रेजों से भी उठना बैठना था, अंग्रेज और महाराजाएं सब उनके ग्राहक थे। लेकिन बाबा ने एक धक से स्वाहा कर दिया, जो शिव बाबा ने उनको आदेश दिया कि अब सब कुछ माताओं बहनों के हवाले कर दो, वो एक सेकंड में कर लिया और बेफिक्र बादशाह बन गए। ये थोड़ी सोचा पता नहीं बुढ़ापा आएगा क्या होगा मेरा, सोचा क्या बाबा ने क्या होगा मेरे परिवार का। बहुत अच्छा बाबा ने सबको सुखी किया। तो कैसे हम ब्रह्मा बाप के समान बेफिक्र बादशाह बने, क्योंकि क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि समस्याएं नहीं आए, समस्याएं नहीं आए और हम बेफिक्र बने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समस्याएं आए तो भी हम बेफिक्र रहें, ये है बड़ी बात। विघ्न आए, समस्याएं आए, तकलीफें आए, अनेक प्रकार के तन के रोग, मन के टेंशन, धन की भी खींचातानी, संबंधों में कई बातें, सब आएगी। बाबा कहते हैं अंतिम विदाई लेने सब आएंगे, 63 जन्मों के हिसाब किताब सब यहीं चुकतू करने हैं, धर्मराजपुरी तक नहीं ले जाना है। धर्मराजपुरी की सजाओं के बजाय यहाँ चुकतू करना बेहतर है, क्योंकि यहाँ बाबा का साथ है, देवी परिवार का साथ है, तो यहाँ भगवान स्वयं साथी बन जाए, देवी परिवार साथी बन जाए, तो वहां पूरा करना सहज है। धर्मराजपुरी में तो अकेले हो जाएंगे, बाबा भी साक्षी हो जाएगा, बाबा कहेगा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। अभी तो बाबा साथ देने को तैयार है, आज बाबा ने कहा हिम्मत भी बाबा ही दे रहे हैं। वैसे कई कहते, बाबा कई बार कहते हिम्मत आप बच्चे रखो, मदद मैं दूंगा, पर आज तो बाबा ने कहा हिम्मत भी साथ है, और उस हिम्मत के बल पर मदद तो बाबा की है ही है। तो इतना बड़ा पान का बीड़ा बाबा ने उठाया, लेकिन यह निश्चय था कि ये मैं करने वाला नहीं हूं, ये तो उसका काम है। कितनी बातें बाबा के सामने आई, यहां तक कि बाबा के ऊपर कलंक भी लगे, ऐसे नहीं कलंक नहीं लगे, क्योंकि बाबा को माताएं देखती थी तो ब्रह्मा बाबा तो दिखाई नहीं देता था, श्री कृष्ण ही दिखाई देता था, तो जा करके गले लगती थी, जैसे श्री कृष्ण से मिल रही है। तो कई स्त्रियां जो बाबा को गले लगती थी तो उनके पति तो वही होते थे कि ये कौन पराए पुरुष को गले लग रही है। बाबा तो बच्ची बच्ची कहेगा, लेकिन कोई समझे नहीं है, बच्ची बच्ची मना पिता है, परंतु कई कलंक लगे, कईयों ने यहां तक कह दिया कि अरे ये तो अपने आप को कृष्ण कहलाता है और ये सब इनकी गोपियां हैं, अभी इनको केवल 300-400 गोपियां मिली है, ये तो कृष्ण कहलाता है, तो 16,108 रानियां चाहिए इसको, ये तो खाली 400 ही मिली है, इतनी रानियां इनको चाहिए, कृष्ण कहलाता है। और बाबा कहते थे मैं तो कहला ही नहीं रहा हूं, ये मेरी शक्ति तो है ही नहीं, ये मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। पर चमत्कार तो सब शिव बाबा ने किए, पर रखा तो ब्रह्मा बाबा को आगे ना। शिव बाबा ने कहा कि पवित्र बनो, प्रतिज्ञा कराई बाबा ने सबसे, शिव बाबा ने सबसे जो भी थे सामने, और सब ने छोटे बड़ों ने प्रतिज्ञा की, ब्रह्मा बाबा ने भी प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो भी कितनी बड़ी बात हो गई, लोगों ने विरोध किया कि अरे ये तो बूढ़ा, तुम तो बूढ़े हो गए, तुमने प्रतिज्ञा की तो क्या बड़ी बात की, ये तो छोटी छोटी कुमारियां इतने जवान, और इन्होंने कैसे प्रतिज्ञा कर ली, आपने कैसे इनसे करवाई, इन्होंने तो अभी दुनिया ही नहीं देखी है, दुनिया देखे बूढ़े हो आपकी तरह तो फिर भले करे, क्योंकि बाबा की तो 60 साल से उम्र तो बढ़ गई है, ज्यादा थी। तो बाबा कहते थे ये मैंने थोड़ी करवाया, ये मैंने करवाया ही नहीं है, तो किसने करवाया, वो शिव बाबा को कहां जाने, वो तो बाबा को ही देखते थे। शिव बाबा ने मुझे भी कहा तब मैंने भी अपना ये प्रतिज्ञा की, और मैंने नहीं कराया, उसने कराया इनसे। तो देखो कैसे हर बात ब्रह्मा बाबा सहज रूप से बेफिक्र हर बात में हो सके, क्योंकि ये मेरी शक्ति नहीं है, उनकी शक्ति है, मैं तो केवल निमित्त हूं। तो इतनी सारी बातें आई, पर बाबा कैसे बेफिक्र रहे, ये कराने वाला स्वयं भगवान है, मैं नहीं हूं। बेगरी पाठ कितना बड़ा चला, कितने बाबा को छोड़ के चले गए, जो संशय बुद्धि बने, पता नहीं यज्ञ चलेगा नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या होगा, तो बाबा को ये कह के गए कि हम बाबा धंधा करेंगे, कमाएंगे, यज्ञ में भेजेंगे। बाबा कहते थे बच्चे कोई जरूरत नहीं, शिव बाबा हुंडी सकारने वाला बैठा है, उनको अपना जीवन दिया है, वो जरूर खिलाएगा, भूखा नहीं मारेगा, भूखे नहीं मर सकते हैं, वो बाबा बैठा है। एक वैसे भी भक्ति मार्ग में गायन है कि चींटी को भी वो खिलाता है, भगवान खिलाता है चींटी को भी, तो चींटी को भी वो खिलाता है तो हमको नहीं खिलाएगा क्या? तो कईयों में संशय तो आया, निश्चय बुद्धि जो थे वो तो पक्के रहे, परंतु जो संशय बुद्धि थे वो तो छट गए। तो बाबा ने कहा ये भी यज्ञ में होना था, ये परीक्षा थी, उस परीक्षा में जो पास हुए वो आगे बढ़ गए, जो वहीं रुक गए फेल हो गए तो माया खा गई। फिर बीच बीच में बाबा की कितनी मुरलियां आती है जिसमें बाबा कहते हैं कि मेरे अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया खा जाती है। किस किस रूप में माया आती है बाबा कई रूपों से बताते हैं, कभी माया कान पकड़ती है, कभी नाक पकड़ती है, कभी चोटी पकड़ती है, कभी ढोंसा मारती है, कभी बेहोश कर देती है। उस दिन बाबा ने कहा सारा वो सिरी मूंड लिया माया ने, हाँ किसका किसकी बदनामी करनी होती है ना उसको, तो उसका क्या करते हैं बाल ही निकाल देते हैं सिरी मूंड लिया, तो माया ने सबकी बेइज्जती कर ली है, सिरी मूंड लिया है, और फिर बेहोश भी कर देती है, और बेहोश करते करते हाँ मार भी डालती है। वो माया मगरमच्छ के मुंह में चले जाते हैं बच्चे। फिर बाबा ने उस दिन कहा कि जरा सी पूंछ रह जाती है, हाँ जैसे ब्राह्मणों की चोटी दिखाते पूंछ, तो दलदल में फंस गए तो उस पूंछ से ही उस चोटी से ही निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पूरा माया खा गई फिर तो गए काम से। लेकिन बाबा फिर भी, बाबा को समाचार तो आता ही था कि बाबा फलाना इतना अच्छा महारथी, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, और बाबा उनको माया खा गई, तो बाबा कहते थे ड्रामा, उसका ये राजधानी तैयार हो रही है, इस राजधानी में तो सब चाहिए, महाराजा महारानी चाहिए, प्रजा चाहिए, दास दासियां चाहिए, नौकर चाकर, एक होते हैं नौकर, दूसरे होते हैं उनके भी नौकर, वो चाकर के भी चौकर, हाँ ऐसे होते हैं। अमेरिका में आप जाएंगे ना, हम कहीं गए थे तो वहाँ एक वो एक माता आती थी सेंटर पर, हफ्ते में एक ही दिन आती थी बस काम करने के लिए, हाँ एक ही दिन सारा घर का काम करके जाती थी, मतलब सब सफाई वफाई सब एक दिन हफ्ते में, परंतु वो भी गाड़ी में आती थी, अपनी कार थी, तो नौकर भी अपनी गाड़ी में आए। तो हमने उनसे पूछा कि आपके घर में फिर कौन कर रहा है, का मेरे भी सर्वेंट है मेरा भी सर्वेंट है, वो मेरे घर में काम करता, क्योंकि बच्चे थे सब थे, तो वो काम करने हफ्ते में एक दिन आती थी, यानी नौकर के भी चाकर, चाकर के चौकर तो ऐसे भी है। तो बाबा कहते राजधानी बननी है, दास दासियां तो चाहिए ना, और जो महलों में रहने वाली दासियां होगी वो तो क्या ठाट से रहती होगी, नहीं जो राजा रानी का महाराजा महारानी का भोजन वही खाती होगी, नहीं परंतु है तो फिर भी दासी ना। तो ये सब राजधानी तैयार हो रही, इसमें सब चाहिए बच्चे, इसलिए बच्चे डरने की बात ही नहीं है, कोई माया के विघ्न डाल रहे हैं, ट्रेटर बन रहे हैं बच्चे, कल पहले जो हुआ था वही हो रहा है, नथिंग न्यू। तो बाबा में कैसे ये बेफिक्र बादशाह रहने की अनुभूति जो थी वो हम बच्चों को प्रेरणा मिली। सचमुच बाबा को देखते थे कैसे बादशाह होके चलते हैं। एक वो मिसाल देते ना कि इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, जबरदस्त युद्ध हुआ था। इंडिया तैयार नहीं था उस युद्ध के लिए और चाइना ने अटैक किया था और बहुत सारा भारत का हिस्सा चाइना ने हड़प लिया था। तो बाबा के पास तो समाचार जाता था, तो बाबा ने कहा कि क्योंकि बहुत बहुत लोग हमारे भी मरे थे 62 के युद्ध में, तो भारत ने जैसे उसका दुख जताया कि इतने हमारे लोग मरे हैं। तो बाबा ने कोई एक वाक्य कह दिया होगा कि बच्चे क्यों चिंता करते हैं, एक दिन आएगा सारा विश्व तुम्हारा होगा। अभी थोड़ा सा लिया है ना, हर्जा नहीं, हर्जा नहीं, सारा विश्व तुम्हारे मुट्ठी में आना है, सारे तुम विश्व पर राज्य करोगे। तो वो जो वाक्य था ना कि अभी लिया है ना, हर्जा नहीं है ना, ये केवल एक लाइन, वो पता नहीं किसी के हाथ में आ गया, वो आ गई वो मुरली, और उसको लगा कि ये लोग जो है ना ये चीन के जासूस है, समझ गए ना, चाइना के ये संस्था जो है ना वो चाइना की जासूस न हो। ऐसे कैसे कह दिया कि कोई बात नहीं। तो बहुत इंक्वायरी हुई, बहुत इंक्वायरी हुई, यहाँ तक कि वो इंक्वायरी वो ऑफिसर माउंट आबू आ गए कि जिसने ये कहा है उनसे मिलना है, कोई बात नहीं, ये शब्द कैसे कह दिया। तो आ गए, तो बेचारी बहनें तो डर गई कि अरे ये बाबा से मिलेंगे, बाबा को क्या कहेंगे, कैसे होगा, गवर्नमेंट के लोग आए हैं इंक्वायरी करने आए हैं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे बुलाओ, बच्चे बुलाओ, आए हो। अब बाबा की पर्सनालिटी को देख के तो पहले ही शांत हो गए, बाबा तो बाबा थे। तो पर बाबा को तो बता दिया था कि बाबा इसलिए आए हैं। अब पहले तो बाबा ने उनकी खूब खातरी की, खूब खातरी की, खूब खिलाया पिलाया खूब। अब वो जिस काम के लिए आए थे वो शुरू कैसे करें। बच्चे 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 बाबा ने कहा। तो फिर बाबा को कहा बाबा एक बात आपसे कहनी है। हाँ कहो बच्चे कहो, बाबा तो आपके लिए ही है बच्चे। तो कहा बाबा, हाँ बाबा ही कहा क्योंकि सब बाबा बाबा कह रहे थे, उनको भी सब एकदम कुछ ब्लैंक, बिल्कुल उनको कोई ज्ञान नहीं था कि बाबा हमने सुना है कि आपने ये वाक्य कहा है कि ऐसे कोई बात नहीं, तो हम जानना चाहते हैं कि चाइना से आपका क्या संबंध है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये मैंने थोड़ी कहा है, किसने कहा है, आपने नहीं कहा है, ये तो आपकी वाणी है ना। तो कहा नहीं बच्चे, वो जो कहने वाला ना वो आके कह के चला गया, समझ गए ना। हाँ कहा, लेकिन ये तो इस माध्यम का आधार लिया, पर इसने नहीं कहा है, वो ना बड़ा बाबा, वो बड़े बाबा ने कहा है। तो वो बड़ा बाबा आया और बड़े बाबा ने ये बात कही। हाँ ना भी नहीं कि हमने कहा ही नहीं, हाँ वो बड़ा बाबा आके कह के चला गया। तो उन्होंने कहा पर ऐसे कैसे कहा। तो कहा वो तो फिर उनसे पूछना होगा। तो कहा अच्छा बाबा, जब दोबारा आए ना तो उनको कहना आगे ऐसे नहीं कहे। और क्या कहेंगे। ओ तब तक तो वो बहनें तो बिचारी इतनी घबरा रही थी, इतनी पता नहीं बाबा को क्या कहेंगे क्या करेंगे, कहीं पकड़ न ले कुछ नहीं, कई बार कितना डर लगा रहता है कि कौन आए हैं क्या करेंगे। तो कहा अच्छा बाबा, अगली बार वो उनको आवे तो कहना आगे नहीं कहे, कहा बाबा कह देंगे, बात खत्म हो गई, बुरी हो गई। क्योंकि बाबा तो बेफिक्र बादशाह के रूप में बैठे थे, इतनी उस पर्सनालिटी को देख के ही वो कोई घबरा जाए, कुछ हिम्मत ही ना करे कुछ शब्द भी मुख से कुछ कहने के। तो कहने का भाव क्या है कि कैसे बाबा बेफिक्र बादशाह रहे। बाबा कई बार कहते थे गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, कैसे कैसे परीक्षाएं आती है, बच्चों के आगे समस्याएं आती है, पेपर आते हैं, लेकिन बाबा सकाश भी देते हैं। 1968 में बाबू अपने भाव विश्व किशोर बॉम्बे में थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़ा ऑपरेशन कराया था, बहुत उनको पेन था, बहुत पेन था, और कैसे बाबा ने मधुबन में सारी रात नींद नहीं की। विश्व किशोर भाव को बाबा ने जैसे योगदान दिया, सकाश दी, नींद नहीं आई थी उनको बहुत दिनों से, और जैसे बाबा ने सारी रात जाग करके उसको सकाश दी और उसको वहां नींद आ गई। यानी इतने समय के बाद बाबा की सकाश ने यहाँ से काम किया, और सवेरे न्यूज मिली कि बाबा आज उसने बहुत अच्छी नींद की, क्योंकि अनन्य मुरब्बी बच्चा था बाबा का, सारा वही संभालता था, सारे ऑफिशियल कारोबार सब वही दिखता था। लेकिन बाबा को उसने कहा जाते समय, रमेश भाई उनको लेके गए थे यहाँ से कि बॉम्बे में ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन सब कुछ जैसे समेट करके गया, जैसे कि अब सब जो सिग्नेचर जो कुछ करना था सब कुछ, जैसे कि वापस नहीं आना है। तो सचमुच वहाँ ही उसने बॉम्बे में ही शरीर छोड़ा। अब इतना मुरब्बी बच्चा, परंतु जब बाबा को ये समाचार मिला कि बाबा उसने शरीर छोड़ा है और बाबा उनका बॉडी मधुबन में ले आए, बाबा ने कहा क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है बच्चे, अब ये तो पांच तत्वों का शरीर है, बच्चा तो छुट्टी लेके गया था, बच्चे ने तो छुट्टी ले ही ली थी। चलो फिर कई, फिर वहां सोचा कि बाबा को फोटो दिखाएंगे इनके, तो फोटोज निकाले थे बहुत ना डेड बॉडी के, तो वो मनोहर दादी जी को बाबा ने भेजा था, बच्ची आप जाओ, तो वो फोटो लेकर के आई थी, तो बाबा से पूछा बाबा फोटो दिखाएं आप, बाबा मैं फोटो लाइक डर डर के, मनोहर दादी अपना अनुभव सुनाती थी जो दादी के साथ ही रहती थी, तो बहुत अनुभव ऐसे दादी के मुख से हमने सुने थे कि बाबा मैं फोटो लाई हूँ, तो बाबा ने तुरंत थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा बच्ची फोटो देख के क्या करेंगे, क्या देख करेंगे, है ना, खत्म खत्म, फुल स्टॉप, एक सेकंड भी बाबा को नहीं लगा, एकदम बाबा न्यारे हो गए। यानी इतना ही बाबा न्यारे भी हुए, प्यार तो इतना प्यार, इतना प्यार जो बताया ना, सारी रात बाबा जाग करके उनको सकाश दी और उसको नींद आ गई वहां, नहीं तो नींद ही नहीं आ रही थी, तकलीफ बहुत थी। तो कहने का भाव है कि इतना ही प्यार, और जितना ही प्यार उतना ही न्यारापन, ये बाबा की विशेषता थी, जिसको बाबा कई बार मुरली में कहते थे न याद रहो न विसरो, न विसरो न याद रहो, विसरो भी नहीं बच्चे, सदा ही याद रहे, पर विसरो भी नहीं और याद भी नहीं रहो, गए बच्चे तो गए सेवा पर गए, बस एक सेकंड में न्यारे हो जाते थे। बाबा के पास कई समाचार लिखते थे, अच्छे अच्छे समाचार भी लिखते थे, तो बाबा समाचार पढ़ते थे, मम्मा भी पढ़ती थी समाचार पत्र। और फिर एक बहन बाबा के सामने आई और बाबा को सब सुनाने लगी, फिर से बाबा मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की, पड़ा चढ़ा करके सुना रही थी बाबा के सामने। तो बाबा अब इसको कैसे रोके, क्योंकि इतना टाइम जा रहा है ना, मैंने ये सेवा की, मैंने की, मैंने की, तो अभिमान भी कुछ जता रही होगी। तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा बच्ची आपने ये सब पत्र में लिखा था ना, हाँ बाबा मैंने पत्र में सब लिखा था, जैसे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। तो बाबा ने कहा बाबा जानते हैं, पत्र में लिखा ना माना जानते हैं, दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है, एक बात हो गई सो हो गई, बता दिया पूरा हो गया। वही हम दादी जानकी को भी देखते थे, इतनी यूनाइटेड नेशंस में सेवा करके आई, यूनाइटेड नेशन में भाषण किया, बड़ी दादी को भी देखते थे कैसे बिल्कुल ब्रह्मा बाप समान। तो मैंने एक बार दादी जानकी से कहा दादी आप यूनाइटेड नेशंस में आप गए, वहां कैसा अनुभव था, दादी कहती मैं तो भूल भी गई, मैं तो भूल भी गई। अरे पिछला एक घड़ी पहले क्या हुआ, एक सेकंड में भूल गए, जरूरत ही क्या है। जो काम की बात है वो तो कभी भूलनी नहीं चाहिए, और जो नकाम की बात है उसको एक सेकंड में भूल जाना चाहिए। अब होता क्या हम लोगों से, हा? काम की बात को तो भूल जाते, सॉरी मैं भूल गई, इतना सहज है। किसी को भी कहो भाई ये काम आपको कहा था आपने किया, ओ सॉरी मैं तो भूल ही गई, कितना सहज कह देते भूल गई। और जो काम की बात नहीं है वो सारा दिन वो याद करते रहते, अरे भाई भूल जाओ ना, पूरा हुआ, खत्म, बात खत्म, नहीं कैसे भूलूं कैसे भूलूं। तो दादी जानकी जी की ये विशेषता देखी थी, बड़ी दादी की भी है, जो काम की बात है वो कभी नहीं भूलेंगे, कैसे भूल सकते हो। और जो काम की है ही नहीं, एक सेकंड के बाद दूसरा सेकंड जैसे कि सब वॉश आउट हो गया। कोई आया बाबा के सामने, मम्मा के सामने, दादियों के सामने, हम देखते हैं कोई आया किसकी शिकायत लेकर के, लेकिन जब वो आई जिसकी शिकायत लेकर आई तो बाबा तो जैसे कि पता ही नहीं है, भूल भी गए, नहीं तो सोचेंगे इसकी शिकायत ये सुन चुका है बाबा या ये दादी सुन चुकी है, जरूर वो पूछेगी, नहीं जब तक वो खुद न कहे, उसका अपना मन खाए और खुद बताए। कई बार तो झूठी शिकायतें भी होती है, आजकल तो झूठी शिकायतें भी बहुत दुनिया में हो रही है किसको गिराने के लिए। तो इसीलिए बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह रहे, तो हमें भी बाबा ने बेफिक्र बादशाह रहना सिखाया है। हरि का कर्म का हिसाब किताब तो अपना है ही है ना, हम क्यों ये बातें सोचे, जो करेगा वो तो पाएगा ही, पर हम सोच रहे हैं उनके बारे में इसने ऐसे क्यों किया, ऐसे ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, हम क्या समझ रहे हैं, किस लिए ये सोच रहे हैं, उसको ठीक करेंगे, हम उसको ठीक करेंगे क्या, कर सकते हैं? जब तक उसको खुद नहीं आए तब तक हम क्या ठीक करेंगे। तो बाबा भी तो जानते थे ना कि बाबा तो मुरली में सुना देंगे, किसी को डायरेक्ट तो कह भी नहीं सकते, वैसे भी नहीं कह सकते किसी को, किसी को कहा तो पहले कहेगा पहले खुद को तो देखो। आजकल ये जमाना है किसको आपने कुछ कहा भी ना कि ये ठीक नहीं क्या, पहले तुम पहले कहेगा आप तो देखो आप भी तो ऐसे ही करते हो, सीधी बात, सीधा टिट फॉर टैट, वो ना बड़ा देखेगा ना छोटा देखेगा। फिर ठीक है कहा मैं सॉरी कह करके उसको स्वीकार करके बदल जाऊं, वो कहा बस सामने ही जवाब, इसलिए किसको कह भी नहीं सकते, छोटों को भी नहीं कह सकते। किसी छोटे को कहो कि ये मत करो, कहेगा करूंगा, क्या कर सकोगे, कर सकोगे, तो इसलिए ये मत करो ये नहीं कह सकते, या ये करो ये भी नहीं कह सकते, बस यहां पूछ सकते हैं बेटा ये करोगे, अब वो सोचेगा करूंगा नहीं करूंगा, नहीं नहीं बोल देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। किसी ने हमको कहा कि ये जो जेनरेशन है ना, ये आयु वाले हम लोग जैसे माँ बाप का भी सुनते थे, माँ बाप ने जो कहा सुनते थे, अब बच्चों का भी सुनना पड़ता है। माँ बाप का भी सुना और बच्चों का भी सुना, ये नहीं कि हमारा बच्चे सुने, हमको सुनना पड़ता है बच्चों का, और जो वैसे जैसे बच्चे कहे वैसे हमको चलना पड़ता है, बड़ों ने जो कहा वो ऐसे भी चलना पड़ा, और अभी छोटे जैसे कहते हैं वैसे भी हमको चलना पड़ता है, इसलिए हमको मरना है। हमारी बड़ी दीदी की लौकिक माँ थी, क्वीन मदर बाबा कहते थे उनका नाम रखा था, क्वीन मदर, तो वो हम लोगों को यही कहती थी, टीचर सामने आती थी ना या कोई भी, कि तीन बातें कहती थी, झुको झुको मरो मरो सिखो सिखो, झुको मरो और सीखो, बस मुझे सीखना है, मुझे झुकना है, मुझे मरना है, लेकिन दुखी होके नहीं, बेफिक्र बादशाह होकर। एक होता है दुखी होकर के कहना कि हाँ मुझे ही झुकना पड़ता है, मुझे ही मरना पड़ता है, मुझे ही बदलना पड़ता है, एक होता है दुखी होकर के कहना, और दूसरा होता है बेफिक्र बादशाह का, ठीक है ना, ठीक है, झुकने में क्या नुकसान है, जो झुकता है वो जिंदा है और जो नहीं झुकता है वो अकड़ गया माना मुर्दा है, मुर्दा तो अकड़ जाता है ना, वो थोड़ी झुक सकता है, जो झुक सकता है माना वो जिंदा है, और झुकने में ही फायदा है, कल्याण है। तो इसीलिए झुक झुक मर मर सिख सिख, पर खुशी खुशी से, दुखी होके नहीं। जैसे आज भी बाबा ने कहा, दुख के आंसू नहीं, सुख के सागर में गोते खाओ समाओ तो दुख के आंसू क्यों आएंगे। लगन में मगन हो जाओ तो दुख के आंसू तो आ ही नहीं सकते। जो बाबा कई बार कहते थे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। तो बाबा ने इस पर एक चुटकुला जोक बना लिया था, जोक ही है तो सच्ची बात है। बाबा की लौकिक युगल यशोदा, वो बॉम्बे में रहती थी, तो उसने शरीर छोड़ा था। निर्मल शांता दादी अपना अनुभव सुनाती थी, बाबा की बेटी ना, लौकिक बेटी। तो कहती थी कि मेरी लौकिक माँ माना यशोदा ने, बाबा की लौकिक युगल हो गई ना, उसने बॉम्बे में शरीर छोड़ा। समाचार आया तो निर्मल शांता दादी तो मधुबन में थी तब, तो बाबा ने उसको बुलाया। उसने कहा कि देखो, तुम्हारी अम्मा मेरी बीबी, समझ गए ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। अब तुम्हारी थी अम्मा और मेरी थी बीबी, अब गई वो। अब निर्मल शांता दादी के मैं तो समझा ही नहीं क्या बाबा कह रहे हैं, समझा ही नहीं मैंने कि कौन सी भाषा बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी अम्मा कौन थी, मेरी बीबी कौन थी, मतलब ऐसे माना जैसे बेटी से बात कर रहे हैं। तो यशोदा, अच्छा, तो बाबा ने तो उसको इतना हल्का ले लिया जो मानो कोई ऐसे लगा ही नहीं, क्योंकि एक उस हल्के रूप से कह दिया। पर कहना ये अगर ये कह सकता कि देखो यशोदा ने शरीर छोड़ा, देखो ये हुआ, पर उसको एक हल्के रूप से ले लिया। यानी कहने का भाव कि बाबा हर बात में, जो कुछ भी ऐसी बातें थी जो बहुत सीरियसली भी ले सकते थे, बाबा उसको इतना हल्का रूप में ले लेते थे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह थे, मैं तो कुछ नहीं करता हूं। और बाबा जो इतनी भविष्य की बातें करते थे साकार मुरलियों में, तो जब बाबा की ये बातें आती थी तो उस समय तो बच्चों को लगता था ये सब कैसे होगा, कैसे होगा, बच्चे माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, बच्चे ये पूरा आबू आपका हो जाएगा, आपको बहुत मकान बनाने पड़ेंगे, ये करना होगा वो करना होगा, सारी दुनिया आएगी, विदेशी बच्चे आएंगे, भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे, न जाने क्या क्या बातें बाबा करते थे मुरली में। तो उस समय जब सुनते होंगे, जब मानो आप 65 66, जबकि अभी तो जैसे कि ये यज्ञ तो कितना छोटे रूप में था, तो लगता था ये तो सब कल्पना लगती है। पर बाबा इतना बेधड़क होके सुनाते थे, शिव बाबा की प्रवेशता थी, हिस्ट्री हॉल में बाबा की मुरलियां चली, मेडिटेशन हॉल में भी नहीं चली ये साकार मुरलियां, और कितने थोड़े बच्चे आते थे, पर बाबा की मुरली ऐसे चलती थी जैसे बाबा हजारों के बीच में बोल रहे हैं। तब बाबा से पूछ रहे, बाबा आपने तो आज ऐसे मुरली चलाई जैसे कि बाबा पता नहीं कितने भाई बहन है, कितने बच्चे आपके सामने बैठे हैं, अभी थोड़ों के सामने सुनाएंगे तो उसी रूप से सुनाएंगे ना, 10-15 के आगे, अब यहाँ 200-250 बैठे तो उस रूप से, 500 बैठे हो तो उस रूप से, 1000 बैठे तो उस रूप से, 10,000 बैठे हो तो उस रूप से, वो बदल जाता है ना सारा, और 1,00,000 हो तो कैसे, वो बड़ी जब सभाएं होती है 1,00,000 की सभा तो उसमें कैसे भाषण होता है। अब बाबा के सामने तो 15-20 भाई बहन है, क्योंकि मधुबन निवासी तो 15-20 ही रहते थे यहाँ परमानेंट, और सारा साल तो पार्टियां आती नहीं थी, गर्मियों में ही आते थे ज्यादातर, सर्दियों में तो बहुत ठंडी होती थी यहाँ, बहुत ठंडी, जुलाई अगस्त सितंबर में भी बहुत बरसात, इतनी बरसात जो बात मत पूछो, फॉगी फॉगी फॉगी, सब गीला गीला, कोई नहीं आते थे, पर बाबा तो यहीं रहते थे। अगस्त मास को कहते थे डिसगस्ट, डिसगस्ट मंथ ऑफ डिसगस्ट, माना वो सब कुछ गीला गीला, कपड़े तो सूखने का नाम नहीं लेते थे, अंगीठी रख करके कपड़े सुखाते थे, तब तो ये कोई हीटर वीटर कुछ भी नहीं थे। तो कई मेरे से पूछते हैं कि इतनी ठंडी में बाबा कैसे रहते थे, तो कमरे में वो कांगड़ी जलाते थे बाबा के, नहीं कांगड़ी होती ना क्या, वो कोयला डाल करके रखते हैं तो वो गर्मी कमरे को गर्म करते हैं। पर अक्सर करके तो बाबा सर्दी के दिनों में बॉम्बे आ जाते थे, तीन तीन महीना बाबा बॉम्बे में रहते थे, दिसंबर जनवरी फरवरी तीन महीना बाबा। तो बाबा के लिए खास फ्लैट लेते थे किराए पर, ब्लू हेवन मलाबार हिल पर, एक बीकन बिल्डिंग या जहाँ का ये हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन से दूर ये जहाँ कफ परेड, कफ परेड मैंने कई बिल्डिंग्स, हम भी वहीं पर बॉम्बे के ही हम रहने वाले हैं, कुलाबा में रहते थे और बाबा की मुरली सुनने जाते थे। हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ते थे, वाटरलू मेंशन में तब सेंटर था, तो बाबा वहां पर भी मुरली चलाते थे। तो फिर हम स्कूल जाते थे, कॉलेज भी जैन कॉलेज जाते थे, तो पहले गामदेवी सेंटर जाते थे फिर आते थे, मतलब स्कूल कॉलेज में 11 साल की उम्र में तो मैं बाबा के पास आई। लेकिन कहने का भाव है कि बाबा बॉम्बे आते थे पर गर्मी के दिनों में यहाँ भाई बहने बहुत आते थे, पर 15-20 की पार्टी आ गई माना मधुबन हाउसफुल और उनके सामने बाबा इतनी जबरदस्त मुरली चलाते थे, तो बाबा को कहते थे बाबा आपने तो आज ऐसे चलाया जैसे कि पता नहीं कितने बच्चे बैठे हैं। बाबा कहते थे बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी चलाता हूँ मुरली। शिव बाबा कहते थे किनको देख के चलाता हूँ, जो भविष्य में आने वाले हैं। बाबा तो उनको भी देख रहे हैं, उनको भी बाबा सामने ला रहे हैं और वे बच्चे भी ये मुरली सुनेंगे। माना दोनों सभा बाबा के सामने, अभी जैसे अव्यक्त बाप दादा कहते हैं ना कि बाबा के सामने दो सभा है, एक बच्चे जो सामने हैं और दूसरे जो दूर दूर बैठकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, घर बैठे बैठे आजकल देख सकते हैं हाँ, पीएम टीवी पर। कईयों को तो बहुत अच्छा मजा आ गया है हाँ, पीएम टीवी पर घर बैठे भी देखते, कहते वाह तो धन्य हो गया, हम तो चल नहीं सकते, मधुबन कैसे जाएंगे कैसे, अभी तो बाबा तो हमारे घर में आ गया हाँ, बाबा हमारे घर में आ गया ना, कई माताएं कहते बड़ी खुश, नहीं बहुत खुश है, लेकिन मधुबन तो मधुबन है, मधुबन का अनुभव तो कुछ और ही है। खैर उस समय तो इतने थोड़े होते थे और बाबा की जबरदस्त मुरली चलती थी, तो बाबा कहते थे मैं किनको थोड़ी देख के चलाता हूँ, मैं तो जो आने वाले बच्चे हैं उनको देख के चलाता हूँ, बच्चे लास्ट सो फास्ट जाएंगे। और अभी हम देख रहे हैं कैसे बच्चे आते हैं, नए नए आते हैं, इतना आगे जाते हैं, इतना आगे जाते हैं, इतनी सेवा करते हैं जो पुराने उससे भी आगे है, विदेशों में तो बहुत है सेवा की लगन, यहाँ तो फिर भी चलो अपने शहर में अपने गांव में जाकर के सेवा करेंगे, वहां तो दूसरे देश में जाके सेवा करेंगे, जिस देश के हैं दूसरे देश में ज्ञान सुना तो अपने देश में जाकर के सेवा करेंगे, तो देशों की सेवा ऐसे ही शुरू हुई है। तो जो बाबा ने उस समय कहा था वो प्रैक्टिकल में अभी देख रहे हैं। लेकिन बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह थे वो अनुभव तो बाबा का ये किस आधार पर था कि ये करने वाला कौन है, ये नहीं कर रहा है, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं। और बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान दिया है, चाहे आत्मा का ज्ञान, चाहे परमात्मा का ज्ञान, चाहे ड्रामा का ज्ञान, ये हमको सहज रूप से बेफिक्र बादशाह बना देता है। क्योंकि पहले तो बाबा स्वमान देते हैं, ये स्वमान से ही हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। कितना स्वमान, चाहे साकार मुरली देखो चाहे अव्यक्त मुरली देखो, कोई न कोई स्वमान जरूर हर मुरली में मिलता ही है। अव्यक्त मुरली में तो पहली लाइन ही स्वमान की लाइन है, बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं एक पहली लाइन, कितने टाइटल्स गिनते जाओ सुनते जाओ नशा चढ़ाते जाओ, बाबा के सामने कौन बैठे हैं। तो इतना स्वमान बाबा हमारा चढ़ाते हैं, उसी से बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, नशा चढ़ जाता है। दुनिया में कोई चिंता से ग्रसित होता है तो जाके शराब पीता है। भाई शराब क्यों पी रहे हो? क्या करूं, बहुत चिंता आती। तो शराब पीने से चिंता दूर हो जाती है। सिगरेट पियेंगे, भाई क्यों सिगरेट पीते हो, धुआं क्यों छोड़ते हो, वो मेरी चिंता भी धुएं से चली जाती है। तो धुएं से चिंता चली जाएगी क्या? फू करेंगे वो धुआं छोड़ते हैं तो चिंता भी फू हो गई क्या? नहीं नहीं, वो तो सारे शरीर को पी जाएगी, दूसरों को भी धुआं देते हैं। तो उनसे तो कोई नशा कोई चिंता ही नहीं जाती है, और ही बढ़ती है। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे ये खर्चा होगा, क्योंकि व्यर्थ है ना, उसमें कोई शक्ति तो है नहीं शराब में या सिगरेट में। लेकिन क्यों पीते हैं? बस चिंताओं से मुक्त होने के लिए, तो नशा चढ़ने के लिए। और बाबा ने हमको बस बाबा की मुरली से नशा चढ़ा दिया। चढ़ जाता है नशा कि नहीं बाबा की मुरली से? चढ़ता है कि नहीं? तो वही नशा हमारे लिए बहुत है। सारा दिन वही नशा रहे, मैं कौन। एक पहेली भी है जो सदियों से चली आ रही है, मैं कौन, हु एम आई। बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने भी ये पहेली पूछी, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, बड़े बड़े फिलोसोफर्स होके गए, मैं कौन। तो भी उनको जवाब नहीं मिला, हल नहीं हुआ है हल इस पहेली का। पर भगवान ने आकर के इस पहेली का हल दे दिया कि तुम कौन हो। तो जैसे ही हम अपने स्वमान का चिंतन करने लगते हैं, नशा चढ़ने लगता है, वैसे ही सब फिक्रों से फारिग हो जाते हैं। फिर मैं किसका, दादी जान की हमेशा ये कहती, मैं कौन, मेरा कौन, मैं किस लिए, बस ये तीन प्रश्नों का जवाब दो तो बस नारायणी नशा चढ़ जाए। तो मैं किसका, सोचो कौन है मेरा साथी। तो जैसे ही हम ये महसूस करते हैं कि मेरा साथी स्वयं भगवान है, मुझे कोई आंधी तूफान रोक नहीं सकता है, तो बेफिक्र बादशाह होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सहज रूप से हम बेफिक्र बादशाह हो सकते हैं। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। फिर चाहे दुनिया कितना भी कह रही है तो पागल है, ये लोग तो पागल हो गए। तो हम क्या कहते हैं, दुनिया कहे हमको पागल, हम कहें दुनिया पागल। हाँ ठीक है, हम पागल तो तुम भी पागल, सब पागल ही है। हमने तो भगवान के प्यार में पागलपना दिखाया, तुम लोग तो भगवान के प्यार को जानते ही नहीं हो। तो भगवान का प्यार जिसने नहीं पाया तो वो अपने रूप से पागल ही है, और हमने पाया तो हम अपने रूप से पागल है। मीराबाई को कहते सारी पागल हो गई है, पगली हो गई है। वो उनका पति राजा, वो खुद कहे इसको, ये तो पागल हो गई है। और वो तो मीरा तो कृष्ण के याद में मस्त रहती है, उसको क्या परवाह। तो बाबा ने भी हम बच्चों को उस रूप से मस्ताना बना दिया, हम किसके हैं जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। हम भी अभी जाते विदेश जाते, पहला प्रश्न लोग यही पूछते हैं, बहन जी कौन आपके साथ कौन जा रहा है? मैं कहता हूं बाबा, और कौन? बहन जी और कोई नहीं? कोई जरूरत नहीं, बाबा हमारे साथ है, सारा विश्व हमारा परिवार है, जहां भी जाओ बाबा के सेंटर्स है, बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हमको तो कोई सचमुच कुछ लगता ही नहीं है कि हम कोई अकेले जा रहे हैं, और बाबा तो है ही है। तो ये भी कितना बड़ा भाग्य हम समझते हैं हमारा है, जो कोई हमसे पूछे कितने भाई बहने हैं आप, तो क्या कहेंगे, कितने भाई बहने, कितना कितने घर हैं आपके। तो इसीलिए ये प्रश्न ही नहीं है। जैसे निर्मल शांता दादी जब वो शुरू में एंटीओ मंडली बनी, उन्होंने केस किया था कि भाई ये दादा लेखराज अपने वो सबको बच्चे बच्चे कह करके अपनी गोद में लेता है, हाँ तो बच्चे बच्चे कहता है, गोद में लेता है, पराई स्त्रियां ये फलाना है। तो निर्मल शांता दादी को कोर्ट में बुलाया, दादी निर्मल शांता बहुत सुनाती थी ये। तो कोर्ट में जब मैं गई तो मेरे से जज पूछता है, बहन जी आपको कितने भाई बहने हैं, यानी बाबा को कितने बच्चे हैं। तो जब तो भाई बहन जी आपको कितने भाई बहने हैं, तो बेचारी तो सोच में पड़ गई कितने भाई बहने हैं। तो दूसरी बार फिर प्रश्न पूछा, फिर भी अभी सोच ही रही है। फिर तीसरी बार गुस्से में आकर के, मैं पूछ रहा हूँ आपको कितने भाई बहने हैं, तो दादी निर्मल शांता जवाब दे रही है, मैं गिनती कर रही थी, आपने मुझे कहा बहन जी तो आप भी मेरे भाई हो गए, आप भी मेरे भाई हो गए, तो मेरे कितने भाई बहने हैं मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, हाँ बता सकते हैं क्या, आप भी मेरे भाई हो गए क्योंकि बहन जी का। तो इसलिए वो जवाब क्या दे, वो तो ये पूछा था कि आपके अगर चार पांच भाई है बहने हैं जो उनके बच्चे हैं तो बाकी क्यों जाते हैं उनकी गोद में। तो फिर उसने समझाया कि देखो आपके अभी सब बच्चे हैं, अगर आप खुद आपकी बेटी शादी करके बाहर गई है, मतलब विदेश गई या कहां गई, और वो बहुत समय के बाद आपसे मिलने आई है, तो आप क्या करोगे, वो बेटी आपको गले नहीं मिलेगी, कहेगा मिलेगी, बस बात ही खत्म, पूरा हो गया केस, केस ही पूरा हो गया। मतलब बेटी है ना, तो बेटी कैसे मिलेगी अपने पिता से, हा? कैसे मिलेगी, पराया पुरुष समझेगी, ये तो पिता है ना, प्रजा पिता, आप उसको पहचानो। तो मना बाबा की बेटी खुद कहे तो चलो वो माने, और आकर के कहे तो मुश्किल हो, तो फिर वो माने भी ना, पर बेटी खुद ही कह रहे कि सब मेरे भाई बहने हैं बहुत। तो परंतु बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह थे, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, ये उनकी शक्ति काम कर रही है। तो एक तो खुद का स्वमान बाबा का कोई कम नहीं था, दिखाई देता था, बाबा चलते थे, दृष्टि देते थे, वो स्वमान में रह करके ललाट चमकता रहता था बाबा का। और फिर बाबा साथ है उसका नशा तो और भी जबरदस्त था। फिर ड्रामा का जो ज्ञान है वो तो हमें पूरा ही बेफिक्र बादशाह बना देता है, लेकिन ड्रामा का ज्ञान हमें ठीक ढंग से समझना होगा। कल भी बाबा ने मुरली में कहा ना, कई कहते हैं ठीक है पुरुषार्थ पड़ा या प्रारब्ध बड़ी, प्रारब्ध में होगा ड्रामा में होगा तो करेंगे, पर ड्रामा ऐसा है जो पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध है ही नहीं, भले प्रारब्ध बड़ी है लेकिन पुरुषार्थ के बिना नहीं है, तो किसको बड़ा रखेंगे, पुरुषार्थ को या प्रारब्ध को, हा? है तो प्रारब्ध बड़ी ना भाग्य। तो ड्रामा ऐसा है कि पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध नहीं है, भले प्रारब्ध बड़ी है पर पुरुषार्थ जरूरी है। और आज तो बाबा ने वरदान में कह दिया पुरुषार्थ भी कैसा है, पुरुषार्थ कौन सा है, मनोरंजन, क्या है, मनोरंजन का रूप, मनोरंजन ही है और क्या है। मैं अभी आ रही थी ना, मैं प्लेन में बैठी थी, मेरे पास में एक समझती हूँ 18, 16, 17 साल का लड़का बैठा होगा, उसके हाथ में कुछ था, तो वो जैसे नहीं ये वो छक्का फेंकते ना, तो मतलब तो ऐसे बना हुआ था, तो सब एक साइज का एक कलर का बनाना है, तो सारा टाइम वही खेल रहा था, घुमा रहा था, इधर कर रहा था, उधर कर रहा था, इधर कर रहा था कि एक कलर के सारे आ जाए, बस करता ही जा रहा था। माय गॉड, पूरा 2 घंटा मैंने देखा वही कर रहा है, मेरे पास में बैठा है। तो अंदर में तो मैं सोच रही, देखो मनोरंजन है पर इसकी बुद्धि कितनी है इसमें, नहीं तो भाई कैसे करना है इसको, फिर ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाना, बुद्धि इसकी चली रही है पर मनोरंजन अच्छा लग रहा है इसको। तो हम देखते हैं कि पुरुषार्थ क्या है, कैसे मुझे अपनी संपन्न स्थिति, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है, एक सेकेंड लगता है, साकार में आओ फिर निराकार बन जाओ। तो बाबा किसका मिसाल देते, कछुए का मिसाल, हाथ पैर चलाओ फिर अंदर ले लो, फिर आओ फिर अंदर ले लो, कितने घंटों घंटों वो कछुआ अपने हाथ पैर नीचे अंदर लेकर के बैठ जाता है, उसको कोई परवाह नहीं है, कोई मार नहीं सकेगा, वो अंदर ले लिया हाथ पैर। फिर देखो उसको खाना खाना है तो चलेगा, कहीं से खाना लेना है उसको, तो बाबा कहते कछुए समान बन जाओ, कर्म किया, कर्म करके फिर न्यारा बन जाओ, साकार में आए फिर निराकार बन जाओ। सहज है मुश्किल है? तो ड्रामा का ज्ञान उसी अनुसार है, ड्रामा ने ड्रामा कहा फुल स्टॉप लग गया, न्यारे हो गए। ड्रामा कल्याणकारी है, जो कुछ हुआ कल्याणकारी था, कोई भी अकल्याण हो ही नहीं सकता है, हर दृश्य कल्याणकारी है। इस समय हमें लगता है ये अकल्याण की स्थिति है, ऐसे कैसे हुआ, ये तो ठीक नहीं हुआ, ये ठीक हुआ ये नहीं हुआ, ये हम कहाँ जाने, त्रिकालदर्शी बाप जाने, तीनों कालों को तो वही जानता है। तो कल्याणकारी हुआ और दूसरा जो भी हुआ नई बात है ही नहीं, नथिंग न्यू। तो ये नथिंग न्यू और कल्याणकारी, ये दो बातें हमको बेफिक्र बादशाह सहज बना देती है और एक सेकंड में न्यारा बना देती है। तो बाबा कहते हैं ना कभी आश्चर्य खाओ, हाय ऐसा हो गया, हाय 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 तो कभी निकलना ही नहीं चाहिए, क्या निकलना चाहिए, वाह वाह, माना हाय हाय कहा, माना एक आह निकली, वो तो दुख की आह है। तो आश्चर्य भी नहीं खाना है, प्रश्न तो पूछना ही नहीं है, पर आश्चर्य भी नहीं खाना है। आश्चर्य खाना भी ड्रामा को नहीं समझने के बराबर है। दुख भी नहीं करना है, चिंता भी नहीं करनी है, डरना भी नहीं है, हाय क्या होगा, उसमें हाय होता है क्या होगा, अरे क्या होगा, अच्छा ही होगा। डर भी न हो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्यों, त्रिकालदर्शी नहीं हो क्या, पता नहीं माना, कोई कह सकता है पता नहीं। बाबा ने एक दिन परीक्षा ली, साकार बाबा ने क्लास में बाबा ने पूछा कि जो समझते मैं त्रिकालदर्शी हूं हाथ उठाओ। अब मैं बाबा की बात कर रही हूँ, अभी तो आप सब उठाएंगे, तो सबने हाथ उठाया, हाँ बाबा हम त्रिकालदर्शी है। तो बाबा ने एक को उठाया, बाबा ने कहा अच्छा बताओ आप त्रिकालदर्शी हो पक्का, कहा हाँ बाबा, अच्छा बताओ कल क्या होगा, तो कहते पता नहीं फिर त्रिकालदर्शी कैसे हो, पता नहीं कहा माना, हाँ तो त्रिकालदर्शी हुए क्या, तो कैसे कहा त्रिकालदर्शी है। बेचारी वो बहन ही चुप हो गई, डर गई बाबा ने कहा नहीं बच्ची डरो नहीं, देखो कैसे त्रिकालदर्शी हो, आप कहो ना कि बाबा ये कहो, ये है मैंने कल क्या होगा पूछा, तो यही कहो बाबा जो भी होगा अच्छा ही होगा, मैंने जो भी होगा अच्छा ही होगा, मना पता है ना जो होगा वो अच्छा, तो त्रिकालदर्शी हो गए ना कि नहीं हो गए, त्रिकालदर्शी माना भविष्य का भी पता है, तो भविष्य का ये तो पता है ना कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, तो त्रिकालदर्शी क्यों नहीं है। और बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं उसमें कल्याण है, बाबा की श्रीमत में हम कभी भी संशय नहीं उठा सकते हैं। हाँ बाबा क्या जाने, शिव बाबा आए सृष्टि पर तो पता चले कितने विघ्न हमारे सामने आते, शिव बाबा को क्या पता, वो तो वहां परम धाम में बैठा है, उसको थोड़ी मालूम है कि हम इस दुनिया में कैसे जी रहे हैं, कैसे कैसे सामना कर रहे हैं। तो क्या बाबा को पता नहीं माना, बाबा श्रीमत जो देता है वो गलत दे रहा है क्या। तो वास्तव में जो बाबा की श्रीमत है उसमें कल्याण है, पर हम नहीं समझ रहे हैं उसका कल्याण, उसमें कितना कल्याण है। तो इस पर भी बाबा ने एक बार परीक्षा ली, बाबा ने कहा कि बच्चे आप बताओ कि जो शिव बाबा कहता है उसमें आप उसमें कल्याण समझते हो, उसने कहा हाँ बाबा आप जो कहेंगे इसमें कल्याण है। तो बाबा ने उसकी परीक्षा ली। बाबा ने कहा कि अभी बाबा कहते हैं जाओ वहां वो कुआं है ना उसमें कूदो जाकर। तो कूदोगी? सभी घबरा गई। कूदोगी जाकर के? तो कहा बाबा हाँ आप कहेंगे तो कूदूंगी। बाबा ने कहा चल भगत। भगत भगत माना ये ब्लाइंड फेथ हो गया। ये क्यों नहीं कहती हो कि बाबा ऐसी श्रीमत आप देंगे ही नहीं? समझा? ऐसी श्रीमत कि जाओ जाके कुएं में कूदो, ऐसी श्रीमत बाबा आप देंगे ही नहीं, हमें वो विश्वास है। ये नहीं कि हाँ बाबा आप कहेंगे तो जाके कूदूंगी। बाबा ऐसी श्रीमत देंगे क्या? तो ये विश्वास है कि ऐसी श्रीमत बाबा देंगे ही नहीं। जो जो आपके कल्याण की श्री है वो ही बाबा कहेंगे, उसके सिवाय कुछ नहीं कहेंगे, जिससे अकल्याण होगा आत्मा का। परंतु हमारा कल्याण किसमें समाया हुआ ये हम ही नहीं जानते हैं। इसीलिए बाबा में संशय उठाना कि बाबा कहते तो हैं लेकिन लेकिन बाबा कहते लेकिन वेकिन शब्द है ही नहीं। बाबा की बाबा में विश्वास माना बाबा की हर श्रीमत पर विश्वास निश्चय चाहिए। तो वो ही बाबा श्रीमत देंगे जो कर सकते हैं। कई बार हम किसी को कोई काम देते हैं वो कहेगी मैं तो नहीं कर सकती हूँ, माना खुद में संशय लिया। पर जिसने काम दिया वो उसी निश्चय से देगा कि कर सकती है, पर वो खुद अपने में निश्चय नहीं रख पाती कि कहेगी मैं नहीं कर सकती। पर बाबा अगर कहता है तो बाबा शक्ति भी देता है, ये भी निश्चय चाहिए। ये जो भी बाबा श्रीमत दे रहा है केवल श्रीमत नहीं दे रहा है, साथ साथ शक्ति भी दे रहा है वो श्रीमत का पालन करने की। तो स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय और ड्रामा की हर सीन में निश्चय कि ये कल्याणकारी है और नथिंग न्यू। तो न प्रश्न है न आश्चर्य है न डर है न चिंता है और न ही कोई दुख है। दुख करने की भी कोई जरूरत नहीं, दुख के दिन तो हमारे गए। वैसे तो बाबा कहते हैं दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, पर कैसे इनसे बचो वो भी बाबा बताते हैं। आजकल तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, विदेशों में तो बहुत बुरा हाल है। अभी मैं कोरिया में गई तो मुझे बताया कि आज 11 बजे बहुत बड़ा वो सायरन बजेगा, क्योंकि कोरिया माना साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ये आपस में दुश्मन है। अगर आप जानते हैं पॉलिटिक्स को दुनिया की, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को धमकियां दे रहा है क्योंकि उन्होंने वो मिसाइल बनाए हैं और कह रहे हैं कि हम साउथ कोरिया पर मिसाइल फेंकेंगे। साउथ कोरिया जो है वो अमेरिका के अंदर अमेरिका का साथ है और नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ है, तो रशिया उनको मदद कर रहा है। ये सब देशों में यही है, अमेरिका एक तरफ तो रशिया दूसरे तरफ। तो वो धमकियां दे रहा है साउथ कोरिया को कि हम तुम्हारे देश पर मिसाइल फेंकेंगे। एक ही देश था, वो दो बट गए, दो देश एक दो के दुश्मन बन गए हैं और वो खूब मिसाइल और धमकियां दे रहा है। तो हर हफ्ते 11 बजे सायरन बजता है और वो सायरन जैसे बजा तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सारे लोगों को कहा जाता है जाके नीचे छिप जाओ, क्योंकि अगर वो मिसाइल गिराएंगे तो माना कितनी लोगों की मृत्यु होगी ना। तो वो सब बिल्डिंग्स में ऐसे वो बंकर बने हुए हैं या जैसे अंडरग्राउंड बेसमेंट जैसे बने हुए हैं जहां पर गाड़ियां रखते हैं, बहुत कुछ है। तो वहां भाग करके सीधा चले जाओ तो बच जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको जैसे, तो एक्सपेरिमेंट करके और जहां भी फैक्ट्रीज है कारखाने बिल्डिंग्स ऑफिसेस ये वो और ये सब, तो अचानक सायरन बजा। मैंने सायरन क्यों बज रहा है? तो कहा कि वो अभी एक्सपेरिमेंट चालू हो जाएगी लोगों के दौड़ने की। हम तो सेंटर पर ही थे, तो हमने कहा, कहते नहीं नहीं आप चिंता नहीं करो ये तो एक्सपेरिमेंट चला। इतना जोर से सायरन बजा, 15 मिनट तक बजता रहा, तब तक सब जैसे एकदम जैसे कहते हैं पूरा शहर ही जैसे खाली हो गया, वो पूरा सब अंदर भाग जाते, खाली हो जाए। तो ये इतना डर है, भारत में तो कोई डर ही नहीं है, है कोई डर यहाँ कि हमारे ऊपर बम गिरेगा? वहां तो कितना डर था, मैं तो हैरान हो गई जाकर के। वहां लंदन में जाओ वहां भी ये डर है, कभी भी कोई भी आतंकवादी कभी भी मिसाइल गिरा सकता है, फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है, डर ही डर है दुनिया में। पर भारत में लोगों को पता है यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। बाबा भी कहते भारत में तो सिविल वॉर लगेगी, हाँ यहाँ एटॉमिक वॉर नहीं लगेगी, यहाँ तो सिविल वॉर होगी, खून की नदियां बहेगी। अब वो तो जब हो, पर वो डर नहीं है जो विदेशों में डर है। पर बाबा क्या कहते, डरो डरो, क्या करो, बेफिक्र बादशाह मौत आना है तो कोई बोल के तो नहीं आएगा, वो तो अपने आप आएगा और लेके ही जाएगा, पर हम कैसे जाएं? चलो तैयार है, एवर रेडी। बाबा ने कहा अचानक एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास सच्ची। तो कैसे हम एवर रेडी रहेंगे? अब एक सेकंड में जो आज बाबा ने कहा निराकारी अवस्था, साकारी अवस्था, कछुए का समान, या बाबा पंछी का मिसाल देते हैं। पंछी सामने देखा कोई विघ्न है, उड़ गया। जो कोई जानवर आएगा पंछी को नहीं पकड़ सकता क्योंकि उड़ गया, वो जानवर थोड़ी उड़ेगा। तो आत्मा न्यारी हो जाए और वो न्यारी अवस्था ही रक्षक बन जाएगी, रक्षा करेगी, या निराकारी अवस्था आ जाए। यही अभ्यास बाबा हमको सिखाते हैं, यही बेफिक्र वाशा बनने की स्थिति, पर बहुत काल का उसमें अभ्यास चाहिए। तो बेफिक्र वाशा बनना सहज है मुश्किल है? सहज है मुश्किल है? सहज है, बोल नहीं रहे हैं हाँ? नशे से बोलो ना, सहज है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। बस एक हाथ की ताली बजाओ ना, आवाज जरूरत ही नहीं है।
कल किसी माता ने एक प्रश्न लिख करके दिया था उषा दीदी के लिए, तो आज उसके ऊपर ही दीदी ने बहुत सुंदर बाबा की बेफिक्र बादशाह स्थिति कैसी रही और हम भी उसको कैसे फॉलो करें, तो इतना सुंदर एग्जाम्पल दे करके बताया। तो जरूर आप सभी के मन के प्रश्न जो है उसका हल हो गया। इसीलिए तो बाबा ने दीदी को कहा है कि आपकी जिहा पर सरस्वती विराजमान है।
ये तो बाबा और ने जब कहा ना, ये बस उसके बाद जब बाबा ने मुझे, मैं तो टोली लेने के लिए गई थी, ये नागार्जुना फर्टिलाइजर्स केवी के राजू थे ना, तो वो आए थे, मैं वहां गई थी, इनके वहां लेक्चर्स दिए थे और फिर वो भी आए थे और बाबा से मिले थे, तो मैं ट्रांसलेशन कर रही थी, तो मुझे लगा बाबा तो मुझे टोली देंगे क्योंकि ट्रांसलेशन किया और क्योंकि हिंदी नहीं समझते थे। तो लास्ट में मैं बाबा के सामने गई टोली लेने, ऐसे हाथ किया तो बाबा ने टोली हाथ में पकड़ा कर मेरा हाथ चोट से पकड़ा और बाबा ने ये शब्द कहे कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जिबान पर है। ये बाबा के शब्द थे। तो मैं तो बस देखती रह गई बाबा को, मैं तो पहले समझा नहीं, यानी बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन माइक तो चल रहा था तो औरों ने सुना, तो मैं तो सुन रही थी, इतना नहीं आया कि क्योंकि बाबा की याद नशे में ही थी। तो मैंने उसके बाद जब औरों ने कहा कि अरे बाबा ने तो आपको सरस्वती का टाइटल दिया, तो आज इस संगम पर सरस्वती तो भविष्य में लक्ष्मी जरूर बनोगी, मतलब ऐसे। तो परंतु मेरी बुद्धि दूसरे रूप से चलने लगी, सरस्वती माना बाबा मुझसे कुछ काम लेंगे, ऐसे ही नहीं बाबा ने कुछ कहा है, बाबा को मुझसे कुछ काम कराना है, कोई बहुत बड़ी सेवा लेनी है और इसलिए बाबा ने मुझे ये तैयार किया। तो मैंने सोचा पता नहीं बाबा किस हिसाब से कहा, पर एक बात मैंने अंदर में ध्यान पर रखी कि अगर बाबा ने ऐसे मुझे कहा है तो इस जुबान से मुझे कोई कड़वे बोल, कोई अपशब्द, कोई अज्ञान की बातें कभी नहीं करनी, क्योंकि सरस्वती जुबान पर बैठी है। यानी मैंने उसको उस रूप से लिया। लेकिन क्या राज है, क्यों बाबा ने कहा, क्या बाबा को कराना है, बाबा जरूर आप कुछ कहेंगे। और उसके थोड़े दिन के बाद टीवी के लेक्चर्स का निमंत्रण मिला।
देखो वही अच्छी बात है, अभी ताली बजाओ। और दीदी तो बाहर भी सेवा करते थे, लेकिन मधुबन में आवश्यकता पड़ी तो दादी जी ने आपको मधुबन में ही रखा। तभी बाबा ने दूसरा भी एक वरदान दीदी आपको दिया है,
वो वरदान
वो बताइए
क्या है। 74, 75, 76 मैं अफ्रीका और मॉरिशियस में सेवा केंद्र खोले। तो 76 में जब मैं वापस आई, पहले भी आई बीच में, पर 76 में मधुबन में ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, भट्टी थी टीचर्स की, तो मुझे दादी ने बुलाया था। तो दादी ने फिर और बहनों को भेजा मॉरिशियस और मुझे कहा तुम भट्टी करने आओ। तो जैसे मैं भट्टी करने आई तो मधुबन में आई, फिर दादी जी ने मुझे कहा कि देखो यहाँ 76 फॉरेनर्स बहुत मधुबन में आ रहे हैं, तुमको विदेश की सेवा का तो अच्छा अनुभव हो गया है, तो अभी यहाँ पर ट्रांसलेशन करना, उनके क्लासेस कराना कौन करेगा, तो आप मधुबन में रहो। तो मैंने कहा ठीक है दादी आप जैसे कहेंगे। तब से मधुबन में रहना शुरू किया। तो मधुबन में रहती थी, पर मुझे संकल्प तो चलता था कि मतलब अभी कहीं जाना नहीं है क्या, मतलब ऐसे ही मन में सोचती थी। तो जैसे मैं बाबा के पास सामने आई, अवेक बाबा के पास, तो बाबा ने मेरे से पूछा आप कौन सी गंगा हो। तो तब तो बाबा पर्सनल बहुत मिलते थे ना यहाँ इसी टाइम में, ये मेडिटेशन हॉल में, आप कौन सी गंगा हो। तो मैंने कहा मैं ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगा तो सब है टीचर्स, आप विशेष कौन सी गंगा हो। तो मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ, क्योंकि ज्ञान गंगा माना बहती गंगा, क्योंकि गंगा के साथ मेल है, तो बहती गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, जो सेंटरों पर रहती ना बहने, वो बहती गंगा है, क्योंकि वो तो बहने तो बदलती रहती है, आज एक सेंटर, कल दूसरा सेंटर, परसों तीसरा सेंटर। और जो भक्त लोग है वो तो अपने शहर में ही रहते हैं, तो भक्त लोग है वो बहती गंगा में स्नान करते, आज एक गंगा में स्नान किया, वो बहन कहीं और चली गई, दूसरी बहन आई तो उसमें स्नान किया। पर आप जो हो ना, आप कौन सी गंगा हो, बहती गंगा हो सेंटर वाली बहनी है, आप कौन सी गंगा हो। अब तीसरी गंगा तो मुझे आई नहीं। तो बाबा ने मुझे कहा कि आप हर की पौड़ी की गंगा हो। हर की पौड़ी की गंगा मालूम ना, हरिद्वार में वो हर की पौड़ी है जहाँ पर सारी दुनिया आके स्नान करती है, साधु संत महात्माएं सब वहीं स्नान करते हैं। पहले पहले उनका स्नान होता है हर की पौड़ी पर, फिर दूसरे आते हैं स्नान करने। तो बाबा ने कहा आप हर की पौड़ी की गंगा हो, क्योंकि सारी दुनिया यहाँ आएगी और आप में स्नान करेगी, माना हर की पौड़ी। तो ये गंगा बाबा ने मुझे कहा,
इसीलिए हर की पौड़ी भी बन जाते हैं। और आज सवेरे हम सभी ने समाचार सुना, बहती गंगा बहते बहते विदेश में जाकर के सभी को पावन बनाकर फिर हर की पौड़ी बन जाते हैं। आपकी मीठी वाणी, संत शीतल आवाज सभी को मंत्रमुग्ध कर देती दीदी। इसीलिए राजयोग शिविर में आने वाले भाई बहने भी नए नए जब आते हैं तो जरूर शिलू दीदी की बहुत अच्छी वाणी, मीठी वाणी है, अनुभव में भी सुनाते रहते हैं। और कहो न कहो दीदी हमारे बॉम्बे के हैं, इसीलिए थोड़ा सा तो हमको भी अभिमान होता है।
हमारी लौकिक माता जी ने, मौसी ने ज्ञान तो साइंस सेंटर से लिया था 1958 में, ब्रिज इंदिरा दादी थे तब और विष्णी दादी। तो हमारी लौकिक मौसी बली बहन, पता नहीं बॉम्बे की, अभी तो घाटकोपर में रहती, तो वो सबसे पहले आई और विष्णी बहन को वो जानती थी, तो मतलब विष्णी बहन से ही उसने ज्ञान लिया। फिर मेरी मदर आई, फिर मैं आई, फिर बाबा उस समय 59 में बॉम्बे में मलाबार हिल में आए थे, तो मेरी लौकिक माता जी मुझे बाबा के पास ले गई। मैं तो स्कूल पढ़ती थी 11-12 साल की थी, और बस बाबा को देखा, बस बाबा की गोद में गई, मेरा नया जन्म हो गया, ऐसे अनुभव करती हूँ। कईयों से पूछना आपका अलौकिक जन्म कैसे हुआ, कोई कहेंगे मुझे दादी की दृष्टि मिली, कोई कहेगा टोली मिली, कोई कहेगा कोर्स किया, कोई कहेगा एग्जीबिशन देखी, और मैं कहती हूँ मेरा अलौकिक जन्म बाबा की गोद में हुआ। गोद में गई और बाबा ने कहा बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई, मना हो गई, ये मेरा अनुभव था।
बहुत बहुत दिल से दीदी आपका धन्यवाद, क्योंकि वैसे सीजन में आते और मिलते, वो मिलना अलग, और ये बाबा के घर में अभी जैसे मिल रहे हैं, सभी भाई बहनों के क्लास भी मिल रहे, तो फीलिंग आती है कि हम परिवार के साथ मिल रहे हैं।
भट्टी बहुत बड़ा भाग्य है, मधुबन में भट्टी करना।